हमने लास्ट टाइम सूरा आराफ में देखा आदम और इबलीस का किस्सा, और डिटेल में देखा कि इबलीस का एजेंडा क्या है, कैसे उसने हमारे वालदैन को फांसा और कैसे फिर उनके सामने कसमें खाई कि मैं तुम्हारा खैर ख्वाह हूँ, मैं तुम्हारी तरफ हूँ, मैं तो तुम्हारा ही भला चाहता हूँ, मुझे क्या है, मुझे थोड़ी इससे कुछ मिलेगा, मैं तो तुम्हारी भलाई चाहता हूँ। और उसके बाद उन दोनों ने जब फल खा लिया तो उनके साथ क्या हुआ और कैसे वो ज़मीन पे उतार दिए गए। और इसमें एक अहम बात जो थी वो ये थी कि लिबास की बात उसमें आई थी कि लिबास उतरवा दिया इस शैतान ने उनका जन्नत का, और उसके बाद वो यानी वो जो नाफरमानी करवाई थी उसकी वजह से लिबास उतर गया। लेकिन शैतान का मकसद ही क्या था, उसको इसका मतलब पता था कि इसका लिबास उतर जाएगा इस नाफरमानी से, जन्नत के लिबास से ये महरूम हो जाएंगे, जन्नत से निकाले जाएंगे, और उसने वो ही काम कराया जिससे अल्लाह ताला ने मना फरमाया था। और उसका एजेंडा क्या था, लिबास उतरवाना। आज हम देखेंगे लिबास की अहमियत पे बहुत सारी बात हम देखेंगे इंशाल्लाह अपने सबक में शुरू में, और उसके बाद जहन्नम वालों की एक दूसरे से बातचीत को देखेंगे। और देखें जब हम लिबास की बात करते हैं ना, तो आज भी इतनी जिसको सिविलाइज्ड वर्ल्ड कहते हैं इसमें भी बहुत सारे लोग आज भी इस पर डिबेट करते हैं कि लिबास जो है ना वो इंसान के लिए एक बोझ है। वो कहते देखो किसी जानवर ने लिबास नहीं पहना हुआ, खामखा इंसान को लिबास पहना के तो इसको बोझल किया हुआ, तो इसको भी लिबास से आजाद होना चाहिए, मतलब है कि जानवरों की तरह ही हो जाना चाहिए। बेसिकली यही कहना चाहते हैं ना कि भाई जानवर नहीं लिबास पहनते तो हम भी ना पहने। तो उन्होंने कहा जी फितरत तो यही है कि इंसान बेलिबास तो आया दुनिया में, तो इसको लिबास तो नहीं पहनना चाहिए। तो लिबास की दीन में क्या अहमियत है, लिबास दीन से ताल्लुक रखता है या फिर ये तुम्हारा दुनियावी चीज नहीं है कि हम लिबास पहनने में क्या कपड़े पहन रही हूं क्या नहीं पहन रही, तो मेरी अपनी चॉइस है या इसमें भी कोई दीन की बात आ जाती है। जी इसमें भी हमारा दीन हमारी रहनुमाई करता है कि हमने कौन सा लिबास पहनना है और कौन सा नहीं पहनना, और लिबास भी क्या दीन की चीज है या नहीं है, या लिबास हमारी अपनी ही चॉइस है या हमारे अपने ही दिमाग में कोई ख्याल आ गया तो हमने खुद ही लिबास बनाने शुरू कर दिए, क्या ऐसा है कुछ, क्या है लिबास, दीन हमारी क्या रहनुमाई करता है लिबास के बारे में, ये आज हम जानेंगे। ठीक है, क्योंकि लिबास हमारी जरूरत है, वो कहते ना रोटी कपड़ा मकान, तो रोटी जहां जरूरत है वहां पर कपड़ा भी इंसान की जरूरत है, और फिर मकान की बारी आती है। तो लिबास इतना ज़्यादा अहम है इसलिए इसके बारे में जानना भी बहुत अहम है। तो आप ये तो जान चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह कि जन्नत में सबसे पहले जो चीज़ हुई थी वो ये हुआ था कि आदम और हव्वा का लिबास उतर गया था। कुछ और नहीं कहा गया कि उनकी खाने की चीज़ें गायब हो गईं या उनको कोई बहुत ही कुछ और कोई सज़ा एकदम मिली, सबसे पहली जो चीज़ उनके साथ हुई जो सज़ा उनको मिली वो थी उनका लिबास उतर जाना। ठीक है, और ये शैतान ने करवाया था। तो आपको शैतानी अगवा का पहला असर पता चल गया, और आपको ये भी पता चल गया कि उसके बाद आदम और हव्वा ने कैसे पत्तों से अपने सतर को छुपाया था। तो अब क्या है, अब हमें क्या कहा जा रहा है, आप देखेंगे आज के सबक में बार बार या बनी आदम इसकी बात आ रही है, और आज की जो हम आयात शुरू करने लगे वो भी इसी से हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या बनी आदम, ए बनी आदम, ए बनी आदम में कौन आ जाता है, मुसलमान या सारे ही लोग जितने इंसान हैं, तमाम इंसानियत आ गई ना। तो फिर याय्युन्नास क्यों नहीं कहा गया, और जगहों पे कहा गया याय्युन्नास, यहां पे क्यों नहीं कहा गया। देखें अभी आदम अलैहिस्सलाम का किस्सा गुजरा है ना, इंसान को याद दिहानी के लिए कि वही आदम जो तुम्हारे बाप हैं जिनकी पुश्तों से सारी उनकी जुर्रियत निकली है, जिनकी तुम भी औलाद हो, भूल ना जाना कि उन आदम के साथ क्या हुआ था, क्योंकि आगे बात सारी रिलेटेड है ना। तो या बनी आदम, ए अब आदम की औलाद, तुम्हारे बाप के साथ तो ये हुआ था, याद रखना तुम उस बाप की औलाद हो जिनके साथ शैतान ने ऐसा किया था। अब क्या बताया गया, कद अंजलना अलैकुम लिबास, तहकीक नाजिल किया हमने तुम पर लिबास, तुम पर लिबास हमने नाजिल किया। अब इसका मतलब क्या है, लिबास क्या आसमान से उतर के आया है, अंजल होता है ऊपर से नीचे आना। तो असल में बात यह है कि इंसान को ये नहीं कहा जा रहा कि कपड़े ऊपर से गिरे थे, मगर ये बताया जा रहा है कि जैसे आसमान से उतरने वाली चीजों में इंसान की तो कोई प्लानिंग नहीं होती, कोई दखल नहीं होता, इसी तरह लिबास जो है चाहे वो किसी चीज से भी बना हुआ है, ऊन से बना हुआ है, रुई से बना हुआ है, किसी से भी, इसमें इंसानी तदबीर का दखल नहीं है, ये सिर्फ अल्लाह ताला का अतिया है, ठीक है। और इंसान के पास ये शऊर कहाँ से आया कि लिबास पहनना है, कि इंसान को लिबास की जरूरत है, ये शऊर अल्लाह ताला ने उसके अंदर रख दिया, इसलिए फरमाया कि ये नाजिल हुआ आसमान से, ठीक है। तो अब इंसान देखें मुख्तलिफ चीजों से अपना लिबास तैयार करता है, लिबास भी जमाने के साथ बदलते रहे, मगर शऊर शुरू से मौजूद है कि इंसान को है कि मैंने अपने सतर को छुपाना है, चाहे वो एक जमाना था पत्तों से छुपाता था, फिर और जमाने आए, फिर किसी और तरह से छुपाने लगा। अब आप देखें कितनी तरह के लिबास हैं, कितनी तरह का मटेरियल है। तो अब फरमाया कि अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए लिबास को नाजिल किया। अब हम तो कभी शायद इस चीज को समझते ही ना हो कि ये भी एक गिफ्ट है, इसका मतलब जो अल्लाह ने उतारा है। देखिए ना, किसी और हैवान, किसी और मखलूक को, मछलियां हो जाएं, परिंदे हो जाएं, कुत्ते, बिल्लियां, शेर, किसी और को शऊर नहीं है कि कोई लिबास चीज होती है, या काबिले शर्म हिस्सों को कुछ छुपाना चीज होती है, या ऐसे को इनके अंदर कोई शऊर नहीं है। ये अल्लाह ताला ने इंसान के लिए उतारा है, तुम पर उतारा, इंसान के किस मकसद के लिए, युवारी सौआतिकुम वरीशा, दो मकासिद के लिए लिबास को उतारा गया। नंबर वन, युवारी सौआतिकुम, तुम्हारे काबिले शर्म हिस्सों को छुपाता है। देखें एक नंगा इंसान ना बुरा लगता है, लिबास इंसान को जीनत भी देता है, आराइश भी देता है, और जिन हिस्सों को एक्सपोज करना उसको काबिले शर्म लगता है, उन हिस्सों को भी ढांप लेता है। कितनी बड़ी अल्लाह ताला ने नेमत अता फरमाई है लिबास की सूरत में, ठीक है ना। चाहे आप कोई भी लिबास हो, कोई मैक्सी पहन रहा है, कोई शलवार कमीज, बात ये नहीं हो रही कौन से लिबास, कोई स्पेसिफिक, मगर लिबास इट सेल्फ आप देखें कि ये कितनी बड़ी अल्लाह की नेमत है। तो लिबास का इसका मतलब मकसद क्या है, सतर को छुपाना, इंसान के इन हिस्सों को छुपाना। लेकिन अगर कोई लिबास इन हिस्सों को ही ना छुपाए तो उसने तो मकसद ही पूरा नहीं किया, चाहे कम छुपा रहा है चाहे छुपा ही नहीं रहा। तो सतर पोशी इसका मकसद है, इस वजह से अल्लाह ने उतारा है कि इंसान अपने आप को सतर को ढांप सके। लेकिन आज इंसान सतर को खोलना चाहता है, तो लिबास का मकसद ये तो नहीं है। और अपने आप को हमें चेक करना चाहिए कि क्या मेरा लिबास मेरे काबिले शर्म हिस्सों को छुपाता भी है कि नहीं, खास तौर पे गर्मियों में, खास तौर पे। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कभी बरहना नहीं देखा, तिर्मिज़ी की रिवायत है। तो इस्लाम कहता है कि सतर को छुपाया जाए, और सतर क्या है, सतर वो हिस्से हैं जिसको छुपाना लाजिम है, लाजिम। सतर के अंदर औरत का सतर कितना है, औरत का सतर है पूरा उसका जिस्म, सिवाय उसके चेहरे और हाथों के, पूरा जिस्म सतर है। मर्द का सतर क्या है, मर्द का सतर है नाफ, इंक्लूडिंग नाफ, नाफ को के नीचे से नहीं, नाफ से लेके इंक्लूडिंग घुटने, घुटनों तक ये उसका सतर है। इसको छुपाना लाजिम है, ठीक है। तो ये बता दिया गया कि इंसान की सतरपोशी का एहतमाम अल्लाह ने किया है, और शरीयत इस्लाम जो है ना, इंसान को हर भलाई में, हर एक उसकी जो ज़रूरत है उसमें उसकी रहनुमाई की है। तो ये ही नहीं सिर्फ बताया कि आप नमाज़ पढ़ें, रोज़ा रखें, बस ये है। ये शायद ही कोई और रिलीजन होगा जिसमें इस हद तक भी रहनुमाई की गई हो कि लिबास तक की बात बताई गई हो। तो अब बताया गया कि लिबास इसके लिए कि सतरपोशी, और रीशा के लिए, खूबसूरती के लिए, यानी इंसान के अंदर एक अल्लाह ताला ने तलब रखी खूबसूरती की, उसके अंदर एक एस्थेटिक सेंस रखी है, तो वो खूबसूरती को पसंद करता है, और लिबास में भी उसको उसकी खूबसूरती है। इसीलिए तो हम बदल बदल के लिबास पहनते हैं, डिफरेंट कलर्स के लिबास पहनते हैं, डिफरेंट डिज़ाइनों के लिबास पहनते हैं, क्योंकि लिबास आराइश है, जीनत है इंसान के लिए। तो इसीलिए तो जो सूरह नूर में आता है ना कि औरतों को कहा गया अपनी जीनत छुपाओ, तो वो समझती हैं कि लिबास तो जीनत नहीं है, ये तो मैंने कपड़े पहने ही हुए हैं। तो लिबास इटसेल्फ जीनत है, इसलिए हमें उसको कवर करना होता है जब भी हम कहीं चादर लेते हैं या कहीं अबाया लेते हैं, क्योंकि ये इसको जीनत कहा गया है, और सबको समझ आती है कि ये जीनत है। इसीलिए हम कितनी पैसे खर्च करते हैं लिबास पे। तो कहा गया ऐ बनी आदम, जहाँ पे अल्लाह ताला ने तुम्हारे ऊपर इतनी नेमतें की हैं ना, तुम्हें लिबास की भी नेमत दी है जो छुपाती है तुम्हारे काबिल शर्म हिस्सों को। आप देखें, छोटा बच्चा भी होता है ना, तो उसको भी, वो भी अपने काबिल शर्म हिस्सों को छुपाता है। और तुम्हारे लिए कितना अच्छा अल्लाह ताला ने जीनत का सामान किया, इसका मतलब खूबसूरत लिबास पहनने में कोई हर्ज नहीं है। आप अगर अच्छा लगना चाहते हैं तो इसमें कोई हर्ज नहीं। ये नहीं बात हो रही कि किसके सामने और किसके सामने नहीं, वो एक अलग बहस है, मगर इंसान लिबास को ज़रूरतन भी पहनेगा कि उसके काबिल शर्म हिस्सों को छुपाए, और लिबास को आराइश के लिए भी पहने। मगर एक बात ज़रूर याद रखे, वह लिबास तकवा दालिक खैर, कि याद रखना ज़ाहिरी लिबास तो पहन लेते हो, लिबास तकवा को ना भूल जाना, वो बेहतर है, वो बेस्ट लिबास जो है ना, वो लिबास तकवा है, सब लिबासों से बेहतर। तो क्या होता है लिबास तकवा? लिबास तकवा की इब्न अब्बास ने जो तफसीर की है वो है अमले साले और खौफ खुदा जिसमें, यानी लिबास आपने जब पहन लिया ना, तो एक तो है आउटर गारमेंट आपका, एक तो है ये कपड़ा जो आपने पहना हुआ जो जाहिर में लोगों को नजर आता है, एक है दिल का लिबास जो तकवा है, तकवा दिल में होता है ना। तो ये है जो इंसान को अल्लाह ताला की नाफरमानी से रोकता है। जब आपने इन कपड़ों के साथ साथ लिबास और तकवा भी पहना होगा ना, तकवा क्या चीज होती है कि अल्लाह ताला की नाफरमानी से हर दम बचते रहना, और उसकी रजा के कामों की शौक रखना और उसमें दौड़ना। तो जो लिबास और तकवा है ना, वो आपकी सोच है, वो आपका अंदर है। अगर अंदर के अंदर हया नहीं है, या अंदर के अंदर खौफ खुदा नहीं है कि आप कपड़े पहनने लगे और आपको खौफ खुदा नहीं है कि मैं क्या पहन रही हूं, लिबास तो पहन ही लिया, आप कह रही हैं मैंने कपड़े तो पहने हुए, लेकिन लिबास और तकवा नहीं पहना, तो वो कपड़े भी क्या से हैं कि उनके अंदर हया नहीं है। बेहयाई वाला लिबास हो सकता है, बेहयाई वाले लिबास को कह रहे हैं देखो पहना तो हुआ है, कपड़ा तो है लेकिन वो सी थ्रू है, लेकिन वो इतना टाइट है, लेकिन वो ऐसा है जो अल्लाह की नाफरमानी का है, वो ऐसा है जिसमें तकब्बुर है, वो ऐसा है जिसके अंदर शर्मो हया ही नहीं है, इतना टाइट, इतना चुस्त, इतना रिवीलिंग ड्रेस है। तो अल्लाह का खौफ ये है जो लिबास तकवा है, और अमले साले लिबास तकवा है, कि इंसान के अंदर जब ये होगा ना, तो फिर तकब्बुर नहीं आएगा। आप देखते हैं बाज़ दफ़ा इंसान कोई लिबास पहन लेता है, लेकिन जब लिबास तकवा साथ नहीं होता ना, तो बड़ा उसके अंदर तकब्बुर होता है, बड़ी बढ़ाई होती है। कभी आप देखें कोई बड़े डिज़ाइनर का कपड़ा पहन लिया, और आपको पता है कि ये हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता, और अब वो आप पहन के निकलते हैं और आपको पता है कि कोई और ये लिबास नहीं पहने होगा, मैं ही हूँ जो यूनिक हूँ, मैंने फलां डिज़ाइनर से बनवाया है। अब उसके बाद जो लिबास का असर ना इंसान की चाल ढाल बोल चाल सोच सब के ऊपर होता है। आपने ये जो लिबास पहना होता है ना, सिर्फ एक लिबास ऐसे ही नहीं होता। आप देखें कुछ लिबास आपने घर के कपड़े पहने होंगे तो कुछ नहीं होता आपको, कोई ऐसा तकबर नहीं आता, लेकिन जब आप वो महंगा तरीन अपना जोड़ा निकालती हैं जो आपने किसी बहुत बड़ी खास ब्रांड नेम का लिया हुआ है, तो उस वक्त सोच कैसी होती है और चाल कैसी हो जाती है, और उस वक्त एक नखरा कैसा आ जाता है, और उस वक्त ऐसा लगता है कि बस सारे तो बहुत छोटे हैं मुझसे, ये क्या चीजें हैं, आज मैं क्या लग रही हूं, आज देखो कि मैं कैसी हसीन हूं। वो जो चीज घमंड इंसान के अंदर आ जाता है ना, तो ये है वो जिससे मना किया गया कि लिबास तकवा भी तो पहन लिया करो, खौफे खुदा का लिबास भी तो पहनो, क्योंकि लिबास के मामले में अक्सर इंसान खौफे खुदा से खाली होता है। अक्सर उसको ये नहीं समझ आती कि अल्लाह ताला कौन से लिबास को पसंद करता है और ये कौन सा लिबास है जो मैंने पहना। इसी तरह बाज दफा इंसान शो ऑफ वाला लिबास पहन लेता है, सिर्फ शो ऑफ है उसमें, उसकी जरूरत नहीं थी ये, लेकिन लोगों को भी तो दिखाना है ना कि मैं देखो ये भी अफोर्ड कर सकती हूँ, मैं देखो ये लिबास भी पहन सकती हूँ। कभी आपने भी सोचा? अगर आज तक नहीं सोचा था तो अब सोचिएगा, जब कपड़े पहन लेंगे किसी पार्टी के लिए, किसी शादी के लिए, किसी खास जगह जाने के लिए, वो आप अपने महंगे वाले जो अच्छे वाले कपड़े जिनको हम कहते हैं वो निकालें ना, तो उस वक्त सोचें लिबास और तकवा भी पहनना है मुझे, वो भी एक लिबास है, क्या मैंने वो साथ ले लिया। जैसे हमने, याद है आपको सूरह बकरा में पढ़ा था जहां पे हज की बात हो रही थी, तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि अपना ज़ादे राह लेके जाओ हज पे, लेकिन याद रखना एक ज़ादे राह को ना भूल जाना, और वो तकवा का ज़ादे राह है, तकवा जरूर साथ पैक करके ले जाना। इसी तरह लिबास, लिबास अल्लाह ने आपके लिए ही उतारा है, लिबास पहनना, खूबसूरत लिबास भी पहनना, इसमें कोई हर्ज नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कीमती लिबास भी पहनना है, एक दफा ऐसी चादर पहनी हुई थी जो 1000 दिरहम की थी, तो वो लिबास भी पहना है। इसी तरह उसके बाद भी आता है कि इमाम मालिक जो थे मुहद्दिस, इतने बड़े मुहद्दिस थे, उस्ताद थे मस्जिद नबवी में, हदीस का दर्स दिया करते थे, इमाम शाफी भी उनके शागिर्द थे, तो हर रोज नया जोड़ा पहनते थे। उनका किसी ने ना उनके लिए यानी एक बांध दिया हुआ था कि पूरे साल भर के जोड़े मैं आपको दिया करूंगा, तो एक लिबास पहनते थे एक दिन और फिर उसके बाद उसको सदका कर देते थे, फिर लिबास पहनते थे सदका करते थे। तो बात ये नहीं है कि आप लिबास अच्छा नहीं पहन सकते या रोज नया नहीं पहन सकते या ये नहीं कर सकते, बात ये है कि आप किस नीयत से पहन रहे हैं। आपके पास लिबास और तकवा है, आज दफा इतनी महंगाई हो जाती है, महंगाई लिबास मिलता है, अब वही लिबास जो कल 1000 रुपए का था वो अब 10 हजार का आता है, जाहिर है महंगाई बढ़ गई, तो अब आप ऐसा भी लेना चाहते हैं जो ड्यूरेबल भी हो, जो ये ना हो कि कल को खराब हो जाए बिल्कुल, एक धोने के ऊपर वो बिल्कुल ही दोबारा पहनने के काबिल ना रहे, तो आप महंगा जरा ले लेते हैं। अब आपकी नीयत ये नहीं है कि मैं लोगों को दिखाऊं कि जरा देखो तो सही मैंने क्या लिया है, आपकी नीयत कुछ और है, वो एक अलग बात है। ये अब देखिए यहाँ पे तकवा की बात आ जाती है ना, ये तकवा कोई और नहीं जानता, ये आपके दिल की हालत आप जानते हैं या अल्लाह जानता है कि क्या नीयतें हैं। तो लिबास और तकवा साथ रखना जरूरी है, जब लिबास और तकवा साथ होगा ना तो फिर आप शीशे में अपने आप को देखेंगी, तो तकवा क्या है, क्या है तकवा, क्या है मेरे से कोई ऐसा काम ना हो जाए जिससे मेरा अल्लाह नाराज हो जाए। जब लिबास और तकवा होगा तो तब शीशे में खड़े होके भी आप देखेंगे कि कहीं वो कपड़े तो नहीं है जिनसे मेरा अल्लाह नाराज हो जाए। अब्दुर्रहमान बिन असलम कहते हैं कि जो अल्लाह से डरे वो अपनी शर्मगाह को छुपाए, तो ये लिबास तकवा है, यानी अल्लाह का डर हो और उस डर के साथ अपनी शर्मगाह को छुपाए, ये खुदा खौफी, और इंसान जो फिर लिबास पहने उसमें खुदा खौफी नुमाया होनी चाहिए। बाज़ दफ़ा हम ऊपर से पहन लेते हैं इस्लामी लिबास, टोपी भी है कोई, मर्दों के लिए जुब्बा है, और वो सोचते हमने इस्लामी लिबास पहन लिया, औरतों ने अबाय पहन लिया, लेकिन लिबास और तकवा फिर भी नहीं होता, वो इतना टाइट होगा या वो ऐसा रिवीलिंग होगा, या फिर उसमें साथ तकब्बर होगा, या उसमें शो ऑफ होगी, तो कहाँ गया लिबास तकवा? इस्लामी लिबास जिसको हम कह रहे हैं वो पहन के भी तकवा का लिबास है ही नहीं, तो कुछ नहीं है। तो मुत्तकीन वाला लिबास पहने, बाज ने कहा कि लिबास तकवा वो है जो आखरत में इंसान को अल्लाह ताला अता फरमाएगा, वो भी हो सकता, लेकिन जो दुनिया में लिबास तकवा पहनेगा उसको ही आखरत में लिबास तकवा मिलेगा ना। तो खौफ खुदा वाला लिबास पहने, ख़ास तौर पे औरतें, मर्दों का तो इतना ज़्यादा नहीं होता, उनके पास ज़्यादा चॉइसेस नहीं है, मगर औरतें हर लिबास पहन लेती हैं, मगर लिबास तकवा नहीं होता, जो बेस्ट है, जो आपको अल्लाह की नज़रों में खूबसूरत करेगा। सब की नज़रों में हम खूबसूरत हो जाते हैं, लेकिन कभी लिबास तकवा पहन के अल्लाह की नज़रों में खूबसूरत नहीं होना चाहते, जिस लिबास को अल्लाह ने बेस्ट कहा है। तो ऐसा लिबास जिसमें पता हो कि खौफ खुदा ही जाहिर हो इसके अंदर, के इस बंदे को खौफ खुदा है जो इसने ये लिबास पहना, क्योंकि बाज लिबास पहन के हम सोचते हैं हाय लोग क्या कहेंगे, ये क्या लग रही है। नहीं, बेहयाई वाले जो लिबास होते हैं उनको हम समझते हैं ना कि इससे मैं ज्यादा लोगों में एक्सेप्टेबल होंगी, तो नहीं, खुदा खौफी वाला भी लिबास पहने। ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ, ये अल्लाह की आयतें हैं, ये अल्लाह की निशानियों में से हैं। مِنْ آيَاتِ اللَّهِ, अल्लाह की निशानियों में से है, इसलिए कि शायद वो नसीहत पकड़े। यानी लिबास भी अल्लाह की निशानी है, जैसे जमीन और आसमान अल्लाह की निशानियां। जमीन और निशानी मतलब क्या होता है? निशानी कहती रहूँ, आप निशानी का ना समझे तो फिर क्या फायदा। निशानी वो चीज होती है जिसको देख के कोई याद आ जाए, ठीक है। तो यानी ये अल्लाह की निशानी है, यानी लिबास को देख के भी अल्लाह की याद आ जानी चाहिए। लेकिन अक्सर लिबास पहनते हुए अल्लाह याद नहीं रहता, लिबास खरीदते हुए अल्लाह याद नहीं रहता, टेलरिंग कराते हुए अल्लाह याद नहीं रहता। जब इस लिबास को पहन के मजलिसों में बैठते हैं तो कभी अल्लाह याद नहीं रहता। तो इसलिए लिबास तकवा जब पहन लेंगे ना, तो वो ही है जिसमें अल्लाह की याद है। फरमाया या बनी आदम, ए बनी आदम, ला यफ्तिनन्नकुम शैतान, ध्यान रखना, बी अवेयर, ला यफ्तिनन्नकुम, हरगिज ना फितने में डाले तुमको शैतान। शैतान कैसे ना फितने में डाले? कमा अखराज अबवैकुम, जैसे उसने निकलवा दिया, एक्सपेल करा दिया अबवैकुम, तुम्हारे वालदेन को। हमारे वालदेन को कहाँ से? मिनल जन्नत, ही जन्नत से। ये कौन से वालदेन की बात हो रही है? ये वालदेन हैं हमारे बाप आदम अलैहिस्सलाम और हमारी माँ हव्वा। उनको ऐसे ना समझा करें कि वो कोई थे, आदम अलैहिस्सलाम एक पैगंबर आए, हव्वा एक उनकी बीवी थी। नहीं, अल्लाह ताला ने उनको हमारे वालदेन कहा है, और वो पूरी इंसानियत के वालदेन। उनको वालदेन की तरह नहीं समझे जैसे हम अपने सक्के माँ बाप को समझते हैं, जिनकी पुश्तों से हम पैदा हुए उनको जैसे समझते हैं ना, इसी तरह इनको समझे। ये हमारे वालदेन हैं, हमारे माँ बाप हैं। अच्छा, आप कोई कह दे अगर कि किसी ने आपके वालदेन को इतनी बेइज्जती की, उनको मसलन आपके बाप को दफ्तर से झाड़े पड़वा के और उनको निकलवा दिया, और कि कोई है जिसने आपकी माँ को घर से निकलवा दिया, उन्होंने इतना प्रोपेगेंडा किया आपके बाप को माँ के खिलाफ कर दिया, और देखो आपकी माँ को घर से उनके महरूम कर दिया। आप मुझे बताएं कि आपके दिल में क्या फीलिंग होगी ऐसे बंदे के लिए, कि जिसने ऐसा काम किया मेरे वालदेन के साथ, क्या कभी आप उससे हमदर्दी रख सकते? क्या कभी आप उसकी बात सुन सकते? कितना बुरा लगेगा वो कि ये हमारा दुश्मन है, इसने मेरे माँ बाप के साथ ऐसा किया, उनको जलील कराया और उनको गिरा दिया कि वो माँ को उसके घर से निकाल दिया। तो वो जन्नत में थे और उनको निकलवाने वाला कौन था? शैतान। तो पूरी बनी आदम को वॉर्न कर दिया गया कि ये सिर्फ आदम का दुश्मन नहीं था, उसने तो कहा मैं इसकी सारी जुर्रियत को बहकाऊंगा। तो याद रखना तुम्हें भी कहीं उसी तरह फितने में ना डाल दे जैसे उसने तुम्हारे वालदेन को जन्नत से निकलवाया। फितना क्या होता है? इम्तिहान, इब्तिला। तो जो उसने उनको यानी उनका था ना एक आजमाइश थी कि इस दरख्त से नहीं खाना, तो वो ममनू काम, वो काम जो कह दिया गया था कि ये नहीं करना, उसी की तरफ उनको लेकर गया। तो कहीं ये ना हो कि तुमसे भी ऐसा ही करवाए, ये ना हो कि वो काम जिसको अल्लाह ने मना किया है उसी को तुमसे करवा ले। समझ आए? यही उसका तरीका होता है। आप देखें दुनिया में इतने मशरूब हैं, क्या बात होती है। अल्लाह ताला ने तो शराब को हराम किया, नशे को हराम किया, वो ले जाके बंदे को उसी में गिराता है जो अल्लाह ने हराम किया हो। तुम जूस पियो, तुम चाय पियो, तुम लस्सी पियो, तुम कॉफी पियो, तुम पानी पियो, तुम तरह तरह के शरबत हैं वो पियो, पता नहीं कितनी तरह के मशरूबात निकाले हुए हैं आजकल, वो सारे छोड़ के एक वो शराब के पीछे क्यों इंसान को लेके जाता है? क्यों उसमें इतना मजा उसको दिखाता है? क्योंकि अल्लाह ने हराम जो किया हुआ, इसलिए उसने यही उनके साथ किया था। तो ला यफ्तीनन्नकुम अश्शैतानु कमा अखरजा अबवैकुम मिनल जन्नति यन्ज़िउ अन्हुमा लिबासहुमा। उसने क्या किया? उनका लिबास उतरवा दिया। किस लिए उतरवाया था लिबास? क्या चाहता था वो लिबास उतरवा के? लियुरियहुमा सौआतिहिमा, ताकि वो उन्हें दिखाए उनकी शर्मगाहें। यानी कितना घटिया उसका एजेंडा था कि उनकी शर्मगाहों को एक्सपोज कर दे, उनकी शर्मगाहों को एक दूसरे के सामने नंगा कर दे। वो हिस्से जिनको इंसान नहीं दिखाना चाहता वो उनको जाहिर कराना चाहता था। इससे आपको क्या पता चलता है? यानी शैतान का पहला वार क्या होता है? बेहयाई, फहाशी, इंसान को नंगा कर देना। नंगा कर देने में भी उसकी जिल्लत है, ये पहला वार है, हया खत्म कर देना। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हया और ईमान साथ साथ है, जब एक जाता तो दूसरा भी चला जाता है। ये ना समझे हया कोई अलग चीज है, क्या है ही हया और क्या है साथ साथ? ईमान साथ साथ है, एक गया तो दूसरा भी गया। तो जिस दिन इंसान बेहया होता है ना तो उसका ईमान भी चला जाता है। और शैतान क्या चाहता है? कि इंसान बस बेहया हो जाए, उसकी हया खत्म हो जाए। और हया दीन का ईमान की शाखों में से एक शाख है। कोई शायद और रिलीजन नहीं होगा जो इतनी हया के ऊपर बात करे। आप देखें, आपको मैं थोड़ी सी हदीस बताती हूँ, आपको उससे अंदाजा होगा कि हया का क्या मकाम है हमारे यहाँ। कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अपनी रान किसी आगे, किसी के आगे ना खोलो, ना किसी जिंदा और ना किसी मुर्दा की रान पर नजर डालो। यानी ये जो थाइस का एरिया होता है ना, ये भी सतर में आता है, तो ये थाइस को खोलो नहीं, जो आपके घुटने से ऊपर तक का हिस्सा है, इसको किसी के सामने नहीं खोलना। फरमाया कि किसी को देखो भी नहीं ये हिस्सा, ना जिंदा का ना मुर्दा का। यानी मुर्दे तक को इतनी इज्जत दी गई कि उसका भी हिस्सा नहीं देखना, जो मुर्दों को नहलाने के लिए जाते हैं, इस जगह को खोलना आपके लिए जायज नहीं है। तो ये पूरा जिस्म ही औरत का तो वैसे सतर है, और इसको छुपाना ये हया है उसकी, और इसको खोल देना बेहयाई है, बेहयाई है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मलऊन है वो जो अपने भाई के सतर पर नजर डाले। फरमाया कोई मर्द किसी मर्द और कोई औरत किसी औरत के सतर को ना देखे, औरत का औरत से भी सतर, इसी तरह नाप से घुटने तक, और मर्दों से तो सारा ही है। लेकिन आज क्या हाल हो चुका है? आप ये देखें कि सतर तो कहीं छुपा ही नहीं है, कहीं औरतों के गले डीप हैं, कहीं उनके बाजू नंगे हैं, कहीं उनकी ये जो पिंडलियां हैं, टखने हैं, ये सब नंगे। तो अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो फरमाया है कि अस्तग़फ़िरुल्लाह कि ऐसी औरतें उनके ऊपर लानत की गई है जो लिबास पहन के भी नंगी रहती हैं। लानत यानी अल्लाह की रहमत से ही दूर है। अल्लाह हम अगर अल्लाह की अब अल्लाह ताला की रहमत के सहारे ही तो हम जिंदगी गुजारते हैं। अगर अल्लाह की रहमत ही हमसे दूर हो गई, अल्लाह की रहमत ही हमसे रूठ गई, हम किधर के रह जाएंगे? क्या इतना शौक है हमें लिबास को दिखाने का कि हमसे रहा नहीं जाता, और हम ऐसे लिबास पहन के जाते हैं कि जो गर्मियों में तो नीचे अंडर गारमेंट्स भी नजर आ रहे होते हैं, फिर जूड़ा ऊपर इतना ऊंचा बना देते हैं, गर्दन सारी नंगी, गला नंगा, दुपट्टा लिया भी हुआ तो वो एक साइड पे डाला हुआ, यहां बिल्कुल ही गायब है। कैप्रीज पहनी हुई है कि वो आधी आधी पिंडलियां तक नजर आ रही हैं। ये है लिबास उत्तकवा। फरमाया लानत है उन औरतों पे जो लिबास पहन के भी नंगी, पहना हुआ है लेकिन आधी नंगी, या इतना बारीक है, या इतने टाइट जीन्स या ट्राउजर्स पहन लेती हैं कि लगता है कि जे पहन पहन के सी भी है या क्या, इन्होंने चढ़ाई कैसी है ये? तो इन ऐसों के ऊपर लानत भेज दी गई। अब मुझे बताएं, जिस पे लानत ही भेज दी गई है वो उसका क्या मकाम होगा? जन्नत में भी अल्लाह ताला ने इंसान को लिबास दिया है कि लिबास की कितनी बात आती है, जन्नत का लिबास हरीर है और इस्तबरक है, और ये कितनी लिबास की बात आती। अगर नंगे होने के अंदर इतना कमाल होता, इतनी खूबसूरती होती, और नंगे होना बड़े आला मकाम की बात होती, तो जन्नत में कहा जाता कि जन्नती जो होंगे वो नंगे फिरेंगे, ये कहा जाता, जन्नतियों को लिबास ही नहीं होंगे। खुद नहीं इससे सोचते कि जन्नत में लिबास की बात की गई है, तो यानी इसका मतलब लिबास बहुत बड़ी एक इंसान की इज्जत और शर्फ और खूबसूरती और एक उसकी एजाज की बात है, और हम यहां पे नंगा होने को एजाज समझ रहे हैं। हम यहां पे दिखावे कि जितना जिस्म ज्यादा दिख जाए उतना अच्छा है। बाजू है कि कोई बुटीक पे आप चले जाएं, वहां पे स्लीवलेस पड़े हैं ड्रेसेस, हाफ स्लीव पड़े हैं, क्यों? हमें इतनी गर्मी लगती है। अफसोस से ये कहना पड़ता है कि आदमी गर्मियों में भी कोट पैंट पहनते हैं, जब उन्होंने किसी मीटिंग पे जाना होता है, किसी दफ्तर में कोई बड़ी चीज़, कोई बड़ी अहम चीज़ होती है, तो कोट पैंट पहनते हैं, चाहे शादी का दिन भी हो, तो वो उन्होंने शर्ट के ऊपर भी कोट पहना होता है, और उनके पैंट्स भी टखनों तक जा रही होती हैं, और औरतें उनको इतनी गर्मी लगती है कि वो जो लिबास पहले पहनती थी उसको भी उतार देती हैं। तो याद रखिए, जहन्नुम की आग तो बहुत गर्म है, वो कैसे बर्दाश्त करेंगी वो जिनको बहुत गर्मी लगती है और वो लिबास उतार उतार फेंक रहे हैं, क्या करेंगे? सिर्फ मेरा तो इतना सवाल है, देखें क्या हमने ये इतनी बात में क्या, तो सारी बातें छोड़ देना, एक बात सिर्फ अगर हमें समझ आ जाती है कि अल्लाह तेरी रहमत मुझसे दूर हो जाए, वो मुझसे रूठ जाए, ऐसे हजारों लाखों लिबास कुर्बान अल्लाह तेरी रहमत के आगे, तो अल्लाह तू मुझसे रूठ जाए, ऐसे लिबासों को क्या करना? मुझे बताएं, हम इतने अल्लाह की मोहब्बत के दावे करते हैं, हम इतने रमजानों में नेकियों के चर्चे करते हैं, हम इतने वो कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, भागे फिर रहे हैं जी, बड़े नेक हम बन रहे हैं, एक चीज जिसको कह दिया गया कि ऐसी औरतें जो लिबास पहने हुए भी नंगी होंगी वो जन्नत की खुशबू भी नहीं पा सकती, और जबकि जन्नत की तो खुशबू ही 500 साल की मुसाफत से आती है, वो खुशबू भी नहीं पा सकती। दाखिल होना तो दूर की बात है, एंट्री छोड़े करीब तक भी नहीं जा सकते। कितनी अल्लाह ताला की नाराजगी है उनके साथ कि उनको करीब भी नहीं ले जाया जाएगा जन्नत के। और आज हमारे ये हाल है कि हम कहते हैं मुख्तसर लिबास हो, टाइट लिबास हो, फिटिंग वाला हो, उसके लिए दर्जी के जाते हैं और उसको कहते हैं हमारा नाप ले। वो नाप ले रहा होता है, वो कहाँ कहाँ से नाप ले रहा है आपका? किसके ऊपर हमें शर्म नहीं आती कि हम क्या कर रहे हैं? लिबास के लिए हम किस हद तक गिर जाते हैं कि शर्मो हया की सारी चीजें उतार फेंकते। आप ये बताएं कि अगर इन दुकानदारों के पास हर औरत जाए और वो ये कहे कि ये वाले हमने कपड़े नहीं लेने जो आपने स्लीवलेस लटकाए हैं, हमें फुल स्लीव चाहिए, कैसे नहीं बुलाएंगे? इसका मतलब ज्यादा लोग वो हैं जो ये मांगते हैं कि स्लीवलेस हो। हालांकि स्लीवलेस बनाना तो आसान है, उसी को काट दोगे स्लीवलेस बन जाएगा, स्लीव लगाना मुश्किल है, कहाँ से लेकर आएंगे उसकी मैचिंग। अच्छा, कईयों ने लगाया भी होता तो कहते हैं अंदर लटके में, लेकिन मैंने को इनको वो स्लीवलेस पहना के खड़ा करते। इंसान तो कितना, जिस जिसके कुरान में अल्लाह ने लिखा हुआ है कि देखो शैतान ने तुम्हारे वालदैन के साथ क्या किया, वो कहीं तुम्हें भी इस तरह से इस फितने में ना डाल दे, वो ही लोग आज उनके बाजारों में जाएं किस किस्म के लिबास लटके में औरतों के। आज देखें कि उन लिबासों में कोई तकवा है, कोई खुदा खौफी का आंसर है? फिर अंडर गारमेंट्स औरतों के खुलेआम लटके में हैं बाजारों में, ये कौन सी हया है, ये कौन सी हया है? तो जिसके बदन पे ऐसा लिबास हो कि वो पहन के भी उसका पर्दा ना हो, या फख्र गरूर हो उसमें, या उसमें इसराफ हो, या उसमें आधा जिस्म नंगा हो रहा हो, या मर्दों के मुशाबे हो, वो सारे लिबास ऐसे हैं जो अल्लाह के यहाँ मबगूज ठहराते हैं। अल्लाह का गजब आता है ऐसे लोगों पे, या दूसरी कौमों की नकाली में हो, वो कौमें जो इस्लाम की दुश्मन हैं, या जो काफिर हैं, या जो मुशरिक हैं, जो उनकी अलामत हो, ये सारे लिबास अल्लाह ताला के यहाँ लिबास तकवा नहीं है। सिर्फ सिर्फ जाहिरी लिबास को ना देखें, खुदा खौफी वाला लिबास पहने, वो वाले लिबास ना पहने जो अल्लाह के गजब में मुबतला कर दे। क्या मैं कहती हूँ, एक औरत बन समर के इतना मेकअप के इतने हजारों मेकअप पे लगवाए, फिर लाखों का उसने जोड़ा पहना हुआ, फिर वो सज धज के घर से बाहर निकलती है और सोचती है आज मुझ जैसा हो तो सामने आए, आज मेरे जैसा कोई नहीं, और अल्लाह ताला भी उसको देख रहा है, अल्लाह की नज़रें भी उसके ऊपर हैं, और अल्लाह ताला उसके तरफ देख रहा है, और अल्लाह का गुस्सा है उसके लिए। लानत है फिर ऐसे लिबास पे कि जो इंसान को अल्लाह की नज़रों में गिरा दे। क्या ऐसा लिबास है कि हम इतने लिबासों के पीछे रीझे जाते हैं कि हमें अल्लाह की परवाह ही नहीं रहती कि वो भी हमसे राजी है या नहीं। इतना हमें शौक है लिबास का कि ये बस लोग देख लें मेरा लिबास, किसी क्या हो जाएगा, लोग आपको देख लेंगे तो क्या हो जाएगा, कोई आपको कमेंट कर देगा आपका बड़े अच्छे कपड़े आपने पहने हुए, बड़ी हसीन आज लग रही, क्या तमगा आपको मिल जाएगा बताएं। यकीन जाने वो दूसरी तरफ मुंह करेगा ना तो उसको याद भी नहीं रहना कि आपने क्या पहना। हमें अपने कपड़े नहीं याद रहते, दूसरों के क्या? आपको याद है पिछली शादी पे जो आप गई थी तो किसने क्या पहना हुआ था? कुछ भी नहीं याद रहता। अब बस उसका तो आज दिन यानी खुशी का अंदाजा नहीं होता जिसको कह दिया जाए आप बड़ी अच्छी लग रही। कितने मर्दों की नजरें उस पे उठी, कितना इसने गुनाह कमाया, और अल्लाह की तो गजब में आ ही गई जब ऐसा लिबास पहन के घर से निकली। तो वो किस तरंग में जा रही है कि मैं कितनी खूबसूरत लग रही हूं और अल्लाह की नजरों में वो कितनी बुरी बन गई। क्या हम सब ऐसा चाहते हैं? क्यों नहीं अपने लिबास पे तवज्जो देते? क्यों नहीं ये सोचते कि आदम और हव्वा को जन्नत से निकलवाया था इस शैतान ने लिबास उतरवा के, उनके सतर खुलवा के। वो इतना हमारा पुराना दुश्मन है, मुझे उसकी दुश्मनी का ख्याल रखना है, वो मुझे पूरा नहीं उतरवा सकेगा तो कहीं ना कहीं से कमी कराएगा। और फिर सितम ये कि अल्लाह ताला माफ करे, मुझे कहते हुए भी शर्म आ रही है कि कुछ औरतों ने अंडर गारमेंट्स भी ऐसे कलर के पहनती हैं कि वो और नजर आए बाहर। क्या हो गया, क्या हो गया हमारी हया को? आपको बता दिया ना, हया और ईमान एक साथ है, जब हया ही नहीं रही ईमान ही नहीं, उसके बाद हम कहते हैं तुम कौन होते मुझे कहने वाले, मेरे अंदर जितना ईमान है तुम्हें क्या पता, अपने ईमान की फिक्र करो, हम तो ईमान वालियां ही बहुत हैं। क्या ईमान वालियां, क्या अल्लाह के सामने उसके बाद खड़े होते किस मुंह के साथ जब ये काम करते हो। تو دیکھو کہ تمہیں یہ شیطان تمہیں فتنے میں نہ ڈال دے کہ جیسے اس نے نکلوایا تمہارے والدین کو جنت سے, ان کے لباس اتروا کے, ان کی شرمگاہیں ان کو دکھا کے. اور دیکھیں لباس کی حالت کا آپ, اس کی اہمیت کا اندازہ آپ اس سے لگا لیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خبردار کبھی برہنہ نہ ہو, کیونکہ تمہارے ساتھ وہ ہیں جو کبھی تم سے جدا نہیں ہوتے سوائے قضائے حاجت کے اور مباشرت کے بعد. جب میاں بیوی ایک دوسرے تعلق کرتے نے لگتے ہیں اس وقت وہ فرشتے الگ ہوتے ہیں, یا پھر جب آپ قضائے حاجت کے بعد جاتے ہیں تو اس وقت الگ ہوتے ہیں. اس کے علاوہ وہ سارا وقت آپ کے ساتھ رہتے ہیں, ان سے ہی کوئی حیا کر لو کہ ننگے نہ ہو. اسی لیے چھوٹی بچیوں کو بھی بہت ننگے لباس ایسے نہیں پہنانے چاہیے کہ وہ بڑے ہو کے ان کو اس کا کوئی احساس نہ رہے. چھوٹے ہوتے سے ہی بچوں کی اس چیز کا خیال کرنا چاہیے. میں کہتی ہوں یہ ماؤں کو بھی اتنی عقل ہونی چاہیے کہ آپ, چلو ایسا وقت نہ بھی ہوتا لیکن آج کا تو وقت بھی اس قدر فتنے کا ہے, اتنا فتنے کا دور ہے, اتنے فتنے ہیں. چھوٹی چھوٹی بچیوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, جو ریپ کے واقعات آپ سنتے ہیں پھر بھی ان کو ایسے فراک پہنائے ہوئے جو اتنے چھوٹے ہیں. عید کی نماز پہ میں گئی, مجھے اتنا دکھ ہوا, ایک عرب فیملی تھی, مائیں پورے حجاب عبایا سب میں تھی اور 10-12 سال کی بچیاں تھیں جن کے فراک اتنے چھوٹے تھے کہ وہ گھٹنوں سے بھی اوپر تھے, اور یہ وہ عید کی نماز پڑھنے آئے تھے. تو یہ تو چھوٹی بچیاں ہیں, ان کو تو کنٹرول کیا جا سکتا ہے. ایون اس سے بھی چھوٹی بچیاں, ان کے بھی ٹانگیں ننگی نہ کریں, نیچے ایسی ٹائٹس بنائیں کہ فراک کے نیچے بھی جو ہوں کم از کم گھٹنے تک تو آئیں. ان کو بھی سلیو لیس کی ابھی سے عادت نہ ڈالیں, ان کو بھی حیا کا درس دیں. اسی طرح یہ بھی نہ سوچیں کہ ہم گھر میں اکیلے ہیں تو اب گرمی بہت ہے تو جیسے بھی پھرنا شروع کر دیں. کوئی لوگ ننگے ہی پھرنا شروع کر دیتے ہیں کہ ہم اپنے کمرے میں ہیں تو کوئی بات نہیں, یہاں پہ کون سا ہمیں کوئی دیکھ رہا ہے تو ہم ننگے پھریں گے. نہیں, یاد رکھیے فرشتے آپ کے ساتھ ہوتے ہیں. ایون یہاں تک ابن ماجہ کی روایت ہے, جب تم میں سے کوئی اپنی بیوی کے پاس جائے تو اس وقت بھی اپنا ستر ڈھانک کے اور بالکل گدوں کی طرح ننگا نہ ہو جائے کہ پورا کا پورا ہی ننگا ہو گیا. ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت المال کے اونٹوں کے چراگاہ میں تشریف لے گئے, وہاں پہ دیکھا ایک اونٹوں کا چرواہا تھا تو وہ لیٹا ہوا تھا پورا ننگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت اس کو معزول کر دیا, فرمایا جس شخص میں جو بے شرم ہے نا, جس میں شرم نہیں ہے, وہ ہمارے کسی کام کا نہیں ہے. آپ سمجھ رہے ہیں نا, میں صرف آپ کو بتانا چاہ رہی ہوں اسلام کا مزاج کیا ہے, اسلام کیسا آپ کو دیکھنا چاہتا ہے. تو اب اسی طرح اب دیکھیں مردوں کی طرف دیکھنا, ان کے میں نے آپ کو بتایا ناف سے گھٹنے تک, یہ تو ان کا ستر مرد سے بھی ہے عورت سے بھی ہے. اور مرد بیٹھے ہوئے اور عورتیں بیٹھے ہوئے ریسلنگ دیکھ رہے ہوتے ہیں, جس میں وہ کتنے انڈر ویئرز پہن کے وہ ریسلنگ کر رہے ہوتے ہیں. آج کل تو اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے, عورتوں کی بھی ریسلنگ آ گئی جو بہت سے مرد بڑے شوق سے دیکھتے ہیں. تو نہ عورتیں اس طرح کی چیزیں دیکھ سکتی ہیں نہ مرد دیکھ سکتے ہیں. عورتیں یہ نہ سمجھیں کہ ہمیں سب کی اجازت ہے, کوئی بات نہیں, آدمی نہ کسی عورت کو دیکھے. میں تو چاہے کوئی باکسنگ دیکھوں, ریسلنگ دیکھوں, یہ دیکھوں, مجھے تو کوئی فرق نہیں پڑتا. ٹینس کھیل رہے ہیں وہ اتنی چھوٹے کپڑے پہن کے. تو ایون ہم عورت ہوتے ہوئے بھی عورت کی ان حصوں کو نہیں دیکھ سکتے. ہم مردے تک کو نہلانے جائیں تو ہم اس کے ستر کو نہیں کھول سکتے. اس چیز کو ہمیں سمجھنا ہے, کیونکہ یہ ہے شیطان کی چال کہ انسان کو بے لباس کر دے, انسان کی عزت تار تار کر دے, شرم گاہیں قابل شرم حصے دوسروں کے سامنے کھول دے, جس سے کیا ہوتا ہے شہوت کا جذبہ بھڑکتا ہے. اور آج آپ دیکھیں پھر یہ کتنے ہومو سیکشوالٹی کے واقعات, کس قدر زنا عام ہو گیا. جب یہ قابل شرم حصے کھول دیے, ضروری نہیں شرم گاہی کھولی جائے, وہ تو پھر اللہ نے فطرت کے اندر ڈالا ہوا ہے, کہیں نہ کہیں انسان چھپانے کی کوشش کرتا ہے, لیکن شیطان باقی سارے حصے کھلوا کے انسان کو ننگا کر کے کھڑا کر دیتا ہے. اور انسان فخر سے کہتا ہے دیکھو میرا لباس کتنا زبردست ہے, اور سوچتا نہیں ہے کہ پہلا وار ہی شیطان نے یہ کیا تھا کہ اس کی حیا ختم کروں, کیونکہ اس کو پتا حیا گئی ایمان گیا. تو اس کا یہی طریقہ ہر دور میں رہا ہے. عورتوں کے تو بہت سارا کچھ لباس اتروا ہی دیا. مجھے تو یہ نہیں سمجھ آتی, اگر آدمی شارٹس پہنتا ہے تو وہ تو پہنتا ہے گھٹنے کے نیچے تک, اور عورتوں نے کئیوں نے شارٹس پہننی ہوتی ہیں पूरे बनी आदम की बात हो रही है, औरतों ने शॉर्ट्स पहनी होती हैं, कितनी छोटी उनकी होती हैं, क्या उनको ज्यादा गर्मी लगती है, क्या टांगों पे बहुत गर्मी लगती है, अगर साड़ी पहन लेंगी तो आधा पेट नंगा। और कहते हैं स्लीवलेस के बगैर क्या खूबसूरती है, साड़ी तो अच्छी तब लगती जब स्लीवलेस हो ब्लाउज, और छोटे से छोटा हो, चोली पहनी है तो पेट नंगा, वो क्या हो गया तुम्हें। अल्लाह अकबर, ये आज के फितने, ये देखो अल्लाह ताला ने 1400 साल पहले ये आयात उतार के हमें बता दिए कि तुम्हारी हदें क्या हैं, और इंसान इतना जाहिल है कि आज तक ना उसको समझ आई कि मेरी हद क्या है। अल्लाह ताला ने खोल खोल के बता दिया, और देखो तो मैंने आपको क्या बताई, क्या लिबास की शराइत है, 70 ढंपाओ, उसमें जीनत भी हो सकती है, वो मर्दों से मुशाबे ना हो, क्योंकि मर्दों का लिबास औरतों से और औरतों का मर्दों से, जो भी कोई मुशाबहत करेगा ना उसके ऊपर भी लानत है। औरतें ऐसे बॉयकट करा लेती हैं कि पता ही ना चले कि मर्द है कि औरत है, और ऐसे कपड़े पहन लेती हैं बाज दफा कि पैंट्स शर्ट्स पहनना अलग एक बात होती है, लेकिन ऐसे कपड़े पहन लेना कि वो बिल्कुल ही मर्दों वाले, पैंटों शर्टों में भी फर्क है मर्दों और औरतों की। या लड़के ऐसे बाल रख लेते हैं कि वो चुटिया बना ली या जूड़ा बना लिया या ऐसे खोले जैसे औरतें लगती हैं, इसराफ ना हो उसके अंदर, उसमें गैर कौमों की नकाली ना हो, उसमें किसी के मजहब की वो उसका ना लिबास हो, तकबर ना हो, ये सारी चीजें हैं। आजी वाला लिबास पहनना, हदूत वाला लिबास पहनना, जिसके अंदर जो इस्लाम ने कहा मैं हदे वो उसको पूरा करता हो। फिर फरमाया इन्नहु यराकुम हुवा व कबीलुहु मिन हैसु ला तरौनहुम, याद रखो शैतान है ना और उसका पूरा एक कबीला है, उसका कबीला कौन है, उसके चेले चांटे, उसके जो आगे उसके फॉलोअर, जो उसके आगे काम को आगे बढ़ाने वाले, उसकी भी टीम है, वो भी टीम वर्क करते हैं ना, अकेला थोड़ी वो इबलीस अकेला आपका मतलब है, वो ही तो नहीं सारी तरफ फिरता जा रहा ना, यहाँ पे इसके पास भी है, उसके पास भी, उसके पास भी नहीं, उसकी तो पूरी टीम है, और देख लें उनका टीम वर्क कितने जबरदस्त तरीके से काम कर रहे हैं कि कयामत तक करते रहेंगे, ना इनके अंदर कोई फूट पड़ रही है, ना कोई मसला हो रहा है। हम तो 4 दिन अल्लाह का काम करने लगे तो उसके बाद एक का मुंह उधर दूसरे से हुआ हुआ, दूसरे का उधर हुआ हुआ, और जो है ना वो बस एक दूसरे से नाराजगियां और दिलों में बुग्ज रखे हुए और छोटी छोटी बातों को लेके इश्यूज बनाया हुआ। वो देखें शैतान उसका पूरा कबीला है, वो इंसान के पीछे पड़े हुए हर एक के साथ लगे हुए, और वो क्या है यराकुम, वो देखता है तुमको, वो भी देखता है और उसका कबीला भी देखता है, उसके जो 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 उसकी टीम है ना वो भी देखती है, उसके साथी जो उसके मिशन में उसके साथ हैं, मिन हैसुला तरौनहुम, कहां से देखते हैं तुम्हें। अब अगर किसी के पास कोई शैतान बैठा है तो वो तो नहीं उसको देख सकता ना, लेकिन वो उसको देख रहा है, वो वहां से तुम्हें देखते हैं, तुम नहीं देख सकते उनको। अब यानी हमारी जंग किसके साथ है, एक ऐसे दुश्मन के साथ जो अनसीन है। अब ये बताएं कि ये मुकाबला कितना मुश्किल है। आप मुकाबला तो ऐसे दुश्मन के साथ सोच सकते हैं जिसको आप देख सकते हैं, तो उसके वो वार करने लगता है, आप उसके वार का मुकाबला करते हैं, कोई चाकू लेके आपकी तरफ आता है, कोई कुछ करता है, तो आप उस अपने डिफेंस में कमजोर तरीन बंदा भी कुछ ना कुछ हाथ पैर तो मारता है, मगर ये वो दुश्मन है जो नजर ही नहीं आता, मुकाबला क्या करेंगे आप। यानी इसका मुकाबला करना आसान नहीं है, इसके मुकाबले के लिए फिर आप पनाह लें, उसकी हिफाजत में आ जाएं जो इसको देखता है और ये उसको नहीं देख सकता, और वो कौन है, अल्लाह ताला की जात, उसके पास हम चले जाएंगे ना, इसीलिए तो माऊज़ु बिल्ला पढ़ते हैं कि हम अल्लाह तेरी पनाह में आ जाते हैं, हम नहीं इसका मुकाबला कर सकते, तू ही हमें बचा। क्योंकि ये तो ऐसी तरीकों से, जिसको मैंने आपको कहा था ना वसवसा क्या होता है, एक दफा थोड़ी आता है, वो तो कभी राइट से आता है, लेफ्ट से आता है, दाएं बाएं आगे पीछे से आ रहा है, ऐसे इंसान को कन्विंस करता है, ऐसे उसको जस्टिफिकेशंस देता है, ऐसे उसको बुराई पे उभारता है, नहीं कोई बात नहीं, ये हिजाब है ना जरा से इसको पीछे कर, इतना भी टाइट क्या, ये टाइट है ना, कितनी बुरी लग रही है, थोड़ा सा पीछे ना एक लट भी बालों की निकाल लो, हाँ अब ये सही लग रहा है, ऐसा ये इतना बड़ा स्काफ, इसकी क्या जरूरत है, छोटा होना चाहिए जो गले के साथ ही ऊपर हो जाए, जरा सीना तो नजर आए, मैं कुछ अट्रैक्टिव तो लगूं, अच्छा भी लगना चाहिए, ऐसा भी नहीं है बिल्कुल सीने के आगे इतना बड़ा स्कार्फ डाला हुआ है अम्मा की तरह, ये तो मैं बूढ़ी अम्मा लग रही हूं। तो यंग लगने के लिए वो इतना स्कार्फ होना चाहिए कि वो बिल्कुल ही गर्दन का फंदा ही बन जाए और सीना बिल्कुल सामने नजर आए। वो तो वहां वहां से वार करता है ना, उसको भी पता है कि औरतों की कमजोरी है कि मैं खूबसूरत लगूं, और बस मुझे कोई कह दे सही कि आप बड़ी हसीन लग रही हैं आज, यू लुक सो प्रिटी, बस ये एक जुमला सुनने के लिए अल्लाह को भी नाराज कर रहे, गुनाह भी अपने सर ले रहे, जन्नत से महरूम हो रहे, लेकिन कोई परवाह नहीं है औरतों को। वो कहते सब कुछ एक तरफ, तो मुझे ये बस कोई कहे तो वो उसको दुनिया में ऐसे लगता है मैं जन्नत में पहुंच गई। बहुत ही घाटे का सौदा है जो हम औरतें करती हैं, बहुत घाटे का सौदा। तो उसका टारगेट बता दिया अल्लाह ताला ने कि क्या है उसका टारगेट, वो किधर से हमले करता है। और तुम याद रखना, तुम नहीं उसको देख सकते, वो अपने जाल में फंसने की पूरी कोशिश करता है। वो तो कहेगा लिबास यहां से उतारो, देखिए ना एक जगह से नहीं ना फिर उतरता, पहले थोड़ी हाँ गर्मी बहुत लगती है, पहले 3/4 हुई स्लीव्स, फिर उसके बाद हाफ हो गई, फिर उसके बाद बिल्कुल ही गायब ही हो गई, फिर उसके बाद स्ट्रैप्स पे आ गए। तो आहिस्ता आहिस्ता करता है ना, एक दफा थोड़ी कहेगा कि आप पूरा ही उतार दो। अल्लाह हमें माफ फरमाए। इन्ना जालना शयातीना औलिया अलल्लदीना ला युमीनून, हमने बनाया इन शैतानों को उनका दोस्त जो नहीं ईमान रखते, ये उनकी साथ दोस्ती करते हैं, जाहिर है ईमान वाले के साथ इसकी क्या दोस्ती हो सकती है। इसका मतलब ईमान वो चीज है जिसकी वजह से इंसान शैतान से बचता है, ईमान। तो ये ईमान जितना ज्यादा होगा उतना ही शैतान आपसे दूर होगा, लेकिन अगर ईमान नहीं है तो फिर इसके साथ दोस्ती है। जाहिर है जो अल्लाह की बात नहीं मानता उसको तो वही अच्छा लगेगा ना, जो अल्लाह की मर्जी पे चलता है या चलना चाहता है वो, उसको तो ये बुरा ही लगेगा। शैतान को ऐसा इंसान तो अच्छा नहीं लग सकता जो अल्लाह का रास्ता छोड़ता है, जो अल्लाह का इनकार करता है, शैतान उससे बड़ा खुश हो जाता है, फिर वो उसको अपना दोस्त बना लेता है। तो इसका मतलब है कि देख लें कि ये कितनी इम्पोर्टेंट चीज़ है लिबास, कि अल्लाह ताला ने लिबास की बात के एंड में ये बताया है, यानी कि शैतान उनके साथ दोस्ती करता है जो ईमान नहीं रखते। आज फतवे देते हैं ना, वो ये कहते हैं वो कहते हैं, नहीं ठीक है आप ये भी पहनना सही है, वो भी पहनना सही है, लेकिन एक दफा जरूर अपने वॉर्ड्रोब खोल के चेक करें कि ये वो वाकई तकवे वाले लिबास हैं, इन लिबासों को पहन के ऐसा तो नहीं कि ये लिबास तकवा में उतार दूं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तो एक औरत आई थी, उसने कहा मेरी चादर इतनी लंबी है तो वो जमीन पे मट्टी में यानी पीछे पीछे मेरे आती तो गंदी होती है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं फरमाया कि उसको छोटी कर लो चादर को, कोई बात नहीं घुटने तक चादर ले लो, फरमाया कि कोई बात नहीं जब एक दफा एक जमीन से गुजरेगी तो दूसरी पे जाएगी तो वो साफ हो जाएगी। तो ये मगर ऑप्शन नहीं दी कि काट लो चादर को। وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً, और देखिए ना कैसे सारी आयतें एक दूसरे के साथ रिलेटेड हैं, गुंदी हुई हैं, लिबास के साथ ही फहाशी की बात आ गई है, क्योंकि देखिए लिबास है जो इंसान को हयादार बनाता है, और वही लिबास जब उतरने लगे या उसी लिबास के अंदर जब शर्म ना रहे तो फहाशी है। तो वह जब और जब वो करते थे कोई बेहयाई का काम, अब ये बात हो रही है कि मुशरिकी ने मक्का जो थे ना, जब वो तवाफ करने के लिए आते थे तो उनका देखो शैतान ऐसी पट्टियां पढ़ाता है इंसान को, हर दौर में उसने ये काम किया, तो वो शैतान उनको क्या समझा दिया था कि देखो भाई ये जो कपड़े पहने हुए इनमें तो हम बड़े गुनाह करते रहे, तो इन गुनाहों वालों कपड़ों के साथ तो नहीं ना फिर तवाफ किया जा सकता, तो इनको उतारा जाए। कुरैश अपने आप को चूंकि बहुत बड़ी चीज और पारसा समझते थे, तो या तो कुरैश कोई लिबास दें किसी को तो फिर वो लिबास पहन के तवाफ करता था, नहीं तो फिर अगर उसके पास कोई नया लिबास होता था तो फिर वो पहनता था। अगर ना नया लिबास है ना कुरैश देते हैं तो फिर नंगे ही तवाफ करते थे, चाहे औरतें चाहे मर्द। और औरतें अपनी शर्मगाह के आगे कोई छोटा सा चमड़ा रख देती थी या कोई छोटा सा कपड़ा आगे ऐसे रख लिया और वो भी नंगी तवाफ कर रही। तो जब इसको कहा गया फहाशी, समझ आई, यानी ये बेहयाई को, यहां पे बेहयाई किसको कहा गया, फहाशी का लफ्ज किसके लिए आया, लिबास के उतारने के लिए। तो जब वो करते हैं फहाशी, खालू वजदना अलैह आबाना, और इनसे पूछा जाए ना क्यों करते हो ये, तो आगे से क्या कहते हैं, इसी तरह हमारे मां बाप किया करते थे, वो हमारे बड़े तो ऐसे ही करते थे, भला वो कोई पागल थे, भला उनको नहीं पता था। हर गलत काम पे शैतान ने क्या पट्टी पढ़ाई है, हम पहले सूरह बकरा में भी पढ़ चुके हैं कि क्या वो कहते हैं आगे से, जो गलत काम करेंगे हमारे तो बड़े ऐसे, हमारे तो खानदान में यही होता है, हमारा तो कल्चर यही है। कभी कल्चर का नाम कल्चर भी क्या है, जो अबाओ इजदाद करते रहे। हमारे बड़े भी क्या है, वही हमारे अबाओ इजदाद, खानदान क्या है, वही अबाओ इजदाद, बस उनको हमने ये करते देखा। ये कौन सी दलील है, जगह जगह कुरान कहता है कि क्या, तो अगर तुम्हारे माँ बाप या अबाओ इजदाद तुम्हारे, उनको कोई इल्म ना हो या वो कोई अकल ना रखते हो फिर भी तुम वही करते रहोगे। वल्लाहु अमरना बिहा, और अल्लाह ने हमें इसका हुक्म दिया है, जाहिर है अल्लाह ने कहा ही है तो फिर ही हम कर रहे हैं ना। कहां दलील है, कुछ दलील नहीं। कहा गया कुल, कह दीजिए, इन्नल्लाह ला यअमुरु बिल फहशा, एक बात तो हमेशा जिंदगी में याद रखे, अल्लाह ताला कभी फहाशी का हुक्म नहीं देता। फहाशी क्या है, बेहयाई की सब चीजें फहाशी में आ जाती हैं, सब चीजें। अब चाहे वो लिबास उतारना है, चाहे वो कोई और बेहयाई की चीजें हैं, चाहे वो आगे आपको पता चलेगा कि अल्लाह ताला ने बेहयाई को मना किया, चाहे वो बेहयाई की लिटरेचर है, बेहयाई के सीन हैं, बेहयाई की बातें हैं, बेहयाई की जगह हैं, कोई भी बेहयाई है अल्लाह ताला उसका हुक्म नहीं देता, अल्लाह उसका हुक्म नहीं देता। ये जो अल्लाह के ऊपर नाम लगा रहे हैं कि अल्लाह ताला ने ये कहा है, अल्लाह ताला ने ऐसी किसी चीज का नहीं कहा, ये तो हमारी रस्में होती हैं जिनके अंदर हम पढ़े होते हैं, कहते नहीं नहीं अल्लाह का भी यही हुक्म है। आज ये गलत कामों के ऊपर यही एक्सक्यूज है, शुरू से हम ऐसे कर रहे हैं। भाई शुरू से अगर आप ऐसे कर रहे हैं तो शुरू से हो सकता है कोई आप गलत काम कर रहे हो, कम से कम अंधी तकलीद से निकलो, कुछ उसकी रिसर्च ही कर लो। ये फहाशी को भी आज ना मॉडर्न नाम दिया गया है, जिसको बहुत मतलब कहते हैं फैशन, या उसको कहते हैं अप टू डेट होना, या उसको कहते हैं अपना सॉफ्ट इमेज होना, ये सब फहाशी के डिफरेंट नाम, या आर्ट या कल्चर, तो ये सब फहाशी के ही नाम है। तो अल्लाह ताला तो फहाशी का हुक्म नहीं देता, फोहश चीजों को अल्लाह ताला ने पसंद नहीं फरमाया, और अल्लाह ताला बड़ा गैरत वाला है, बड़ा गैरत वाला है। एक बंदे ने आगे कहा था कि मैं तो बड़ा गैरत वाला हूं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं तुमसे ज्यादा गैरत वाला हूं, और अल्लाह उस मतलब सबसे ज्यादा गैरत वाला है, और इसी वजह से उसने फहाशी को हराम कहा है, हराम है फहाशी। तो इसलिए कोई भी ऐसी बेहुदा बात, बेशरम बात कभी ये ना सोचे कि ये अल्लाह की तरफ से होगी, वो तो फहाशी को मना करता है। الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء, اللہ تعالیٰ نے فرمایا شیطان تمہیں فقر کی طرف فقر کا ڈر دیتا ہے اور تمہیں فحاشی کا حکم دیتا ہے, اللہ تعالیٰ تو نہیں دیتا, یہ تو شیطان کا کام ہے۔ یأمرکم بالفحشاء, وہ دیتا یہ حکم, اللہ نہیں دیتا فحاشی کا حکم۔ اور ہم اللہ تعالیٰ کے اوپر نام لگا دیں, اتقولون علی اللہ ما لا تعلمون, کیا تم اللہ کے اوپر وہ باتیں لگاتے ہو جو تمہیں پتہ نہیں ہے, और अल्लाह का नाम लगा दिया। कहाँ लिखा है वो? आज कहते ना, कहाँ लिखा है कुरान में? कहाँ कहता है ये हमारा दीन? हम तो खुशी करना चाहते हैं, दीन में क्या खुशी करना मना है? यानी खुशी आप कर लें, अपनी खुशी कर लें, चाहे अल्लाह को नाराज कर लें। और सबसे बड़ी हमारी माशाल्लाह मिसाल जो है ना, वो तो शादियां। शादी पे तो कोई, अब हर चीज हलाल हो गई, हर चीज जायज हो गई, सारी फहाशी जायज हो गई। हम कहते हैं हमारे घरों में तो ऐसा ही हमेशा होता था, मां बाप की खुशी के लिए बेटा तुम ऐसा नहीं करोगे, मेहंदी नहीं करोगे, ढोलक नहीं करोगे। अब फिर उसके बाद डीजे को बुला के नाच नाच के हलकान होते हैं। जिस लोगों के अंदर, जिनका ये कुरान है ना, ये कुरान, जो इस कुरान के मानने वाले हों, और फिर उनकी बेटियां और उनकी औरतें, उनके लिए डीजे कहे कि डांस फ्लोर इज ओपन और आओ आके डांस करो, डूब मर जाना चाहिए फिर हमें। यहां तो हमें कोई इल्म नहीं कि हमारा दीन क्या कहता है, इसका मतलब कुछ पता नहीं है हमें, या फिर शायद अगर पता है तो ईमान नहीं है। कैसे हो सकता है कि ऐसी बातों को जानने, जान के, समझ के, और उसके बाद फिर हम वही काम कर रहे हैं जो शैतान चाहता है कि हम करें, जो शैतान का एजेंडा है? कैसे हो सकता है कि हम उन्हीं चीजों में इन्वॉल्व हो जाएं? तकुलून अल्लाह ही माला तालमून। जब जो कोई कहता है ना, तो खुशियां करने से कहां पे कुरान ने मना किया, तो ये बताएं कि कुरान को आपने कितनी दफा समझ के पढ़ा है? अब कहां है इस्लाम के अंदर ये मना? ये हम मिक्स गैदरिंग करें, नहीं, ये हमारी इतनी खुशी है, हम तो सब मर्द औरतें एक साथ बैठेंगे, फैमिलीज हैं, सब एक साथ बैठेंगे, जहां पे किसी की नजरें किसी पे, अपनी बीवी पे तो नहीं होती, वो तो पहले ही बुरी लगती है, दूसरों की बीवियों पे होती है। एक सच्चा वाकया मेरे सामने आया, मैंने कहा देखो कितनी खुराफात, औरतें समझती नहीं है इस बात को। कि एक वाकया आया, किसी ने कहा कि कितने साल हो गए उनकी शादी को, उनके माशाल्लाह बच्चे भी बड़े हैं, अब उनके शौहर को ये ख्याल आया कि कोई उनके जानने वाले हैं जिनकी यंग लड़की है और उसकी डिवोर्स हो गई है, तो अब इन मौसूफ को ये ख्याल आया कि मैं उसको सहारा दे देता हूं, तो उसको सहारा देने के लिए ये उससे अब शादी करेंगे। ये नहीं मैं कह रही कि शादी नहीं कर सकता या कुछ, इसके ऊपर नहीं बात हो रही, मगर बात इस पे है कि जिस वक्त हम बेपर्द होके मर्दों के सामने होते हैं ना, तो फिर ऐसे ही फितने होते हैं। औरतें अपने शौहरों के सामने जब और औरतों को देख के गवारा कर लेती ना, अगर आप बेपर्द फिर रहे हैं तो कोई और औरतें भी बेपर्द फिर रही हैं वहां पे, जिनके ऊपर आपके शौहरों की नजर होगी, और फिर ये फितने आएंगे बाद में। अगर उसकी उसके घर में ना बनी, तो कल को वो कहेगा मैं जाके इसके साथ कर लेता हूं, मेरी शादी हो तो सकती है ना। तो कहां से बात शुरू हुई? आपका मतलब है कि वो ऐसे ही सहारा देने का ख्याल आ गया उसको, और उसी यंग लड़की को सहारा देने का ख्याल आया, और बेचारी इतनी बेवाएं हैं, और बेचारी इतनी, उनको नहीं ख्याल आता, मगर इसका आया उसको ख्याल, क्योंकि उससे पहले ऐसे लोग देखते रहते हैं इन औरतों को, और उसके बाद फिर जहां पे कोई गड़बड़ हुई, कोई मसला हुआ, तो फिर कहां पे कसूर आता है? जब हम अल्लाह की हदों को पार करते हैं ना, तो नुकसान हमारा ही होता है, इसमें फायदा कोई नहीं है। और उसके बाद फिर औरतें रोती हैं और पछताती हैं, लेकिन अब क्या फायदा? तो आज बेहयाई की हिमायत में खड़े होने वाले इतने लोग हैं, और फिर अफसोस की बात ये कि अल्लाह का नाम लेके कहते हैं, कहां दीन में ऐसा है, कहां हदीस में, हमें भी पता है, हमने भी बड़ा पढ़ा हुआ है, किधर लिखा हुआ है जी कि आप खुशियां नहीं कर सकते? लेकिन किधर ये लिखा हुआ है कि खुशियां इस कॉस्ट पे करो कि अल्लाह ताला तो नाराज हो तो हो, तुम जरूर अपनी खुशी कर लेना? ये किधर लिखा हुआ है भाई? ये भी कहीं दिखा दो कि अल्लाह के हुक्मों को तोड़ना लेकिन अपनी मर्जी जरूर पूरी कर लेना। ये शैतान की बात तो हो सकती है, अल्लाह के कुरान की नहीं हो सकती, मगर लोग यही बात कहते हैं। कहां लिखा हुआ है, किधर मना है? वो आप पढ़ोगे तो पता चलेगा किधर मना है। कहां हम खुशियां नहीं कर सकते? क्या हमारी खुशियां करना इस्लाम में मना है? इस्लाम में खुशी को मनाना मना नहीं मगर हया को तार तार करना मना है, किसी की बेटी को नाचते हुए देखना मना है, और वो जो अपनी बेटियों को नचाते हैं उनकी हया किधर चली गई। हाँ फिर हम कहते हैं इतना भी क्या एक्सट्रीम हो गया, ये तो आप लोग बहुत एक्सट्रीम है। कभी अपनी वार्डरोब खोल के देखें और कभी जो इस तरह के नाच गाने करके करते वक्त सोचें कि हमारे नबी अलैहिस्सलाम अगर यहाँ आ जाएं तो ऐसी मजलिस दिखा सकती हूँ, खुद ही जवाब आ जाएगा, यकीन जाने अपने अंदर से जवाब आएगा। तो अल्लाह का नाम लेके इन चीजों को जायज ना करें। अतकुलून अल्लाह माला तालमून, अल्लाह के ऊपर झूठ बांधना, अल्लाह के नाम के ऊपर फहाशी को जायज करना, नफ्स की ख्वाहिशात को पूरी करना अल्लाह का नाम लेके। कुल अमर रब्बी बिल किस्त, कह दीजिए अल्लाह तो किस्त का हुक्म देता है, अल्लाह फहाशी का थोड़ी देता है। और किस्त क्या होता है? इंसाफ, जिसका जो हक है उसको वो उसका हक देना, ना कमी ना ज्यादती, ना हद से बढ़ना हाँ ना हद से पीछे रहना। तो अब जितने भी हकूक हैं उनके अंदर किस्त जरूरी है, इंसाफ जरूरी है। अल्लाह का हक भी उसको पूरा पूरा दो, रसूल का हक दो उनको, रिश्तेदारों का हक दो, जितने आपके और इर्द गिर्द के लोग हैं, हमसाए हो गए या और आपके साथ ताल्लुक वाले हुए, उनके हकूक दो किस्त के साथ, इंसाफ के साथ। और सबसे बड़ा तो हक अल्लाह ताला का ही है, तो लिहाजा अल्लाह का हक क्या है? तौहीद, तौहीद के ऊपर चलो, सिर्फ अल्लाह की इबादत करो, एतदाल में रहो, ये है किस्त। वअकीमू वुजूहकुम इंदा कुल्ली मस्जिदिन, और कायम रखो अपने चेहरों को हर मस्जिद की नजदीक। इंदा कुल्ली मस्जिदिन मतलब नमाज के वक्त में भी अल्लाह की तरफ चेहरा करो। कुल्ली मस्जिदिन, इंदा कुल्ली मस्जिदिन मस्जिद की के नजदीक, यानी नमाज के वक्त में अपने चेहरों को उसकी तरफ तो मुतवज्जे करो। और फिजिकली भी किबले की तरफ मुंह करो, यानी मानवी तौर पे भी अल्लाह की तरफ अपना रुख करो और फिजिकली भी जो अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है उस तरफ रुख करो। और इसी तरह आप अगर ज़र्फ़े मकान ले लें, एक तो मैंने आपको जमान का बताया ना, जिस वक्त नमाज का जो वक्त हो, एक है नमाज की जगह, तो नमाज की जगह में भी उसकी मस्जिद की जगह जो भी यानी किबला है उसकी तरफ रुख करो इबादत के वक्त। नमाज के वक्त इसका मतलब है या नमाज की जगह में इधर उधर देखना या इधर उधर अपने चेहरे को करना, जब आप नमाज में खड़े में इधर उधर रुख करना ये सही नहीं है, बल्कि अपने चेहरे को किबले की तरफ ही रखना चाहिए और नज़रों को सजदे की जगह पे होना चाहिए। तो नमाज को जब इंसान सीरियस लेता है तो फिर बहुत सारे काम खुद ब खुद सीधे हो जाते हैं। वदउहु मुखलिसीन लहुद्दीन, और पुकारो उसको खालिस करते हुए दीन को, यानी अल्लाह ताला के लिए इबादत को खालिस करो। अब यहां पर इमाम इब्ने कसीर ने जो फरमाया वो ये फरमाते हैं कि जो पहली बात है ना, वाकीम वजूहकुम इंदा कुल्ली मस्जिदिन, वो है इत्तेबाए रसूल, यानी रसूल के इत्तेबा करो, रसूल ने जिस तरह सिखाया है उस तरह करो, ठीक है। और फरमाया आगे जो है ना कि वदउहु मुखलिसीन लहुद्दीन, इखलास, तो इखलास अपनी इबादत में पैदा करो, यानी फरमाया कि सारे अमलों के लिए ये है, सारे आमाल तुम्हारे ऐसे होने चाहिए अगर तुम चाहते हो कि वो कबूल हो, तो फिर उनके अंदर क्या होना चाहिए? पहली चीज कि तुम इत्तेबाए रसूल करो, इत्तेबाए रसूल। नंबर टू, इखलास होना चाहिए कि हर इबादत सिर्फ अल्लाह को खुश करने के लिए हो, किसी और को नहीं। समझ आई बात?
ये ना हो कि तरीका किसी और का हो, रसूल का तरीका कुछ है और कोई और तरीका है जो इबादत का शुरू कर दिया, तो वो अमल कबूल नहीं होगा। और अगर इखलास नहीं है तो वो भी नहीं कबूल होगा। तो देखें, एक बाहर की चीज है ना और एक अंदर की चीज है। बाहर की चीज क्या है? जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तरीका बता दिया। अंदर की चीज क्या है? इखलास है। अंदर और बाहर दोनों ही शरीयत के मुताबिक होने चाहिए। कई लोग कहते ना, नीयत तो हमारी अच्छी है ना, यानी अमल को छोड़ो, जिस जो भी हम कर रहे हैं उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन नीयत हमारी अच्छी है। नहीं, अमल भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक होना, जैसे आपने सिखाया उस तरह होना चाहिए, और नीयत भी दुरुस्त होनी चाहिए। कोई ये नहीं कह रहा कि नीयत ना दुरुस्त रखो। फरीकन हदा व फरीकन अहकालिहिमुद्दौला, सॉरी पीछे कर रह गया, कमा बदाअकुम तऊदून, जैसा कि उसने पहली मर्तबा तुमको पैदा किया था, यानी बदा उसने पहली मर्तबा तुम्हें बनाया था, ताउदून तुम लौटोगे, यानी जैसे तुम्हें उसने पहले पैदा किया था ना, जैसे हम पहले कैसे पैदा हुए थे, नंगे जिस्म थे, मर्द बेखतना थे, कोई ना पैर में जूती ना बदन पे कपड़ा, बिल्कुल ऐसे ही फकीरों की तरह दुनिया में आए थे, इसी तरह तुम दोबारा जमा किए जाओगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम अल्लाह के सामने नंगे पैर नंगे बदन बेखतना जमा किए जाओगे, जैसे कि तुम्हें पहली मर्तबा पैदा किया था इसी तरह दोहराया जाएगा। ये अल्लाह का वादा है, ये अल्लाह का वादा है। तो यानी अपने आमाल तुम दुरुस्त रखो, क्योंकि तुम्हें वापस जाना है, और वापस जाओगे तो कोई इनमें से चीज तुम्हारे साथ नहीं होगी। ये जो कमेंट्स आपको मिलते हैं ना, तुम बड़ी खूबसूरत लग रही हो फेसबुक पे, या आपके फैंस बन जाते हैं क्योंकि आप बड़ी हसीन लगती हैं, या आपकी बड़ी तारीफें होती हैं, ये तारीफें भी ना यहीं बुझ जाएंगी। हाँ, मगर अल्लाह की नज़र में आप जो होंगे वो हमेशा के लिए रहने वाली चीज़ है, वो क़यामत के दिन काम आएगी। कमा बदअकुम ताऊतून, जैसा कि उसने पहली दफ़ा तुम्हें बनाया था, वापस तुम्हें ऐसा ही लेकर उठाएगा कि ना तुम्हारे पास कोई चेकबुक होगी, ना कोई बैंक बैलेंस होंगे, ना कोई जायदादें होंगी, ना कोई ख़जाने होंगे, ना कोई फैमिली इर्द गिर्द होगी, कोई भी नहीं, अकेले अकेले ही दुनिया में आए थे, अकेले अल्लाह ने खड़ा कर देना। तो इस हिसाब किताब से पहले क्या करो, अकीम वजूहकुम इंदा कुल्ली मस्जिद, ने हर अपनी इबादत में, हर इबादत के अंदर अपना रुख अल्लाह की तरफ रखो, अपना रुख सीधा करो, नमाज में तो करना ही करना है, और इखलास पैदा करो, रियाकारी छोड़ दो। और देखें, इखलास ना बड़ा ही मुश्किल काम है पैदा करना, इखलास पे मुसलसल वर्क करना पड़ता है, क्योंकि इखलास बड़ी जल्दी गायब हो जाता है। इंसान काम शुरू तो बड़े इखलास से करता है, खालिस करता है, लेकिन उसके बाद इखलास कहीं चला जाता है। और इखलास है क्या? कि बस अल्लाह मुझसे राजी हो जाए, बस ये नीयत हो, ना किसी को दिखाने की, ना सुनाने की हो, ना अपने काम पे तारीफ चाहिए हो, ना अपने काम पे शुक्रिया चाहिए हो। किसके लिए कर रहे हैं? उसी से आप लेना चाहते हैं ना, ये थोड़ी कि दूसरा, अगर आपने किसी और की खातिर किया तो ठीक है, फिर आप उससे शुक्रिया ले लें, लेकिन हम कहते तो यही हैं कि नहीं, हम अल्लाह की खातिर कर रहे हैं, लेकिन चाहते ही हैं कि हमारा ये शुक्रिया अदा करें। तो याद रखिए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अपने तमाम अमाल इखलास के साथ करो, क्योंकि अल्लाह ताला इखलास के बगैर किसी अमल को कबूल करता ही नहीं है। और फरमाया अपने दीन में इखलास रखो, तुम्हारा कलील अमल भी काफी हो जाएगा। थोड़ा सा भी करोगे ना अगर आप इखलास के साथ, वो ऐसे ही नहीं कहा गया कि खजूर को, एक खजूर को भी अल्लाह ताला उहद पहाड़ के बराबर उस दिन कर देगा जो इंसान ने सदका की होगी। इतना बड़ा कर दिया उसने, तो एक खजूर दी थी, लेकिन उसमें इखलास था ना, समझ आए? तो इखलास इतनी बड़ी चीज है कि वो अमल की समझ ले मिठास है, वो अमल बेकार है, वो रद्दी अमल है जिसमें इखलास नहीं है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह ताला इस उम्मत के ज़ईफ़ लोगों की दुआओं, उनकी नमाजों और उनके इखलास की वजह से इस उम्मत की मदद फरमाता है। यानी इखलास इतनी बड़ी चीज़ है। तो अब कोई इंसान जिंदगी भर कभी नहीं ये कह सकता कि मेरे अंदर तो अब पूरा इखलास आ गया, अब मैं बिल्कुल परफेक्ट हूँ, اب مجھے کوئی مسئلہ نہیں. اخلاص کے اوپر آپ نے ورک کرتے رہنا اپنی آخری سانس تک, کیونکہ آج اخلاص آئے گا نا کل شیطان اس میں کچھ اور ڈلوا دے گا, کہیں کوئی بات دل کے اندر آ جائے گی. تو نیک کام کرنا اتنا مشکل نہیں ہوتا جتنا یہ اخلاص پیدا کرنا اور اس کو رکھنا مشکل ہے, کیونکہ شیطان بہکاتا رہتا ہے انسان کو, حتیٰ کہ وہ عمل ضائع ہی کرا کے ہی چھڑواتا ہے, کہتا ہے ٹھیک ہے کر تو لیا اس نے, اس کو ضائع کرا دوں گا, ریاکاری جو ہو گئی, کیونکہ اس سے عمل بھی گیا اور الٹا گناہ بھی لکھا گیا. اور انسان خوش خوش پھر رہا ہے, میں دیکھو کتنی زبردست کام کرتی ہوں بھائی, ادھر بتا رہا ہے ادھر بتا رہا ہے, اس کو یہ پتا نہیں ہے کہ میری تو وہ کب کی نیکی ختم ہو چکی ہے اور کب سے اس کے اندر گناہ لکھا جا چکا ہے. تو شیطان ورگلاتا رہتا ہے انسان کو جب بھی کوئی وہ نیک عمل کرتا ہے. ایک آدمی ہوتا ہے وہ کوئی نیک عمل کرتا ہے تنہائی میں کرتا ہے, اس کا اجر لکھا جاتا ہے, شیطان اس کو بہکاتا ہے کہ اچھا لوگوں میں تو اس کا اعلان کرو نا, لوگوں کو بتاؤ تو صحیح, پھر وہ لوگوں کو بتا دیتا ہے, پھر اس کی جو نیکی ہوتی ہے وہ ظاہر نیکیوں میں لکھ دی جاتی ہے, اور تنہائی میں عمل کرنے کی وجہ سے جو اجر تھا وہ اس سے کم کر دیا جاتا ہے. پھر شیطان اس کو ورگلاتا ہے, حتیٰ کہ وہ چاہتا ہے کہ اس نیکی کا ذکر اور آگے کیا جائے اور اس پہ میری تعریفیں بھی ہوں, پھر اس کے عمل کو ظاہری نیکیوں سے بھی کاٹ دیا جاتا ہے اس کے اعمال نامے میں, اور لکھ دیا جاتا ہے یہ عمل ریاکاری کے طور پہ اس نے کیا تھا. ریاکاری تو شرک ہے. تو حضرت انس بیان فرماتے ہیں کہ جب قیامت کے دن نامہ اعمال لایا جائے گا نا, مہر زدہ ہوگا, مہر لگا دی گئی ہوگی, سٹیمپ ڈب, اس میں کچھ نہیں, جب سے مرا تھا اس وقت مہر لگی گئی. اللہ تبارک تعالیٰ فرمائے گا کہ اس صحیفے کو قبول کر لو اور اس صحیفے کو چھوڑ دو. فرشتے کہیں گے تیری عزت کی قسم ہم نے تو وہی لکھا ہے جو اس نے عمل کیا تھا. اللہ تعالیٰ فرمائے گا تم نے سچ کہا لیکن اس کا عمل میری ذات کے لیے نہیں تھا, آج میں صرف اس عمل کو قبول کروں گا جو صرف میرے لیے تھا. اب لگا لیں آپ یہاں پہ پہاڑ نیکیوں کے, ہم یہ کرتے ہیں, ہم ایسے, ہم ویسے, ہم فلاں, اس کے بعد آپ کو کیا پتا کہ اندر کیا رہ گیا ہے اور کیا نہیں رہا. اس لیے ہر انسان کو ڈر کے رہنا چاہیے, ہم نہیں جانتے, کوئی اپنی نیکیوں پہ اترائے نہ, کیا پتا اس کے اندر کہیں آمیزش آ گئی ہو ریاکاری کی, کہیں تکبر آ گیا ہو. تو جس انسان کی صرف اور صرف خالص بس یہی ہونا کہ اللہ کا قرب مل جائے, اس کی رضا مل جائے اور دنیا کی کوئی بھی غرض اس میں نہ ہو, تو پھر ہے وہ اخلاص والا عمل. تو اب دیکھیں یہ مشکل کام ہے, مشکل کام ہے, کیونکہ انسان کو شوق ہے دکھاوے کا. کوئی لوگ اپنا حسن و جمال دکھا کے دکھاوا کرتے ہیں اور اس پہ تعریفیں چاہتے ہیں, کوئی اپنی نیکیاں دکھا کے دکھاوا کرتے ہیں اور اس پہ تعریف چاہتے ہیں. کسی کے پاس کچھ ہے, وہ اس کے پاس دکھانے کو اپنی شکل و صورت تھی, اس نے اس طرح سے اپنی شو آف کر لی. وہ جو دین کی طرف آ جاتے ہیں وہ جبے اور عبائے تو پہن لیتے ہیں, پھر وہ اپنی نیکیوں کی شو آف کر کے اس پہ تعریف چاہتے ہیں, کیا فرق رہا؟ ہاں آپ بھی شو آف چاہتے ہیں, وہ بھی شو آف چاہتی ہے. آپ کہتے ہیں وہ کتنی بری ہے جو ایسے کر رہی ہے, اور آپ نے خود کیا کیا؟ اللہ اکبر. امام غزالی نے فرمایا کہ عبادت کم بھی ہونا لیکن اس میں ریا اور تکبر نہ ہو, اور اس عبادت کا باعث اخلاص ہو, یعنی اخلاص پہ بھی گئی ہو تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس عبادت کا بے حساب کتاب, بے حساب اس کی قیمت ہے. اور عبادت بہت زیادہ ہو لیکن اخلاص سے خالی ہو تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کی کوئی قیمت نہیں, کوئی حیثیت نہیں. وہ دیکھیں نا, ایک موتی جو ہے وہ ہزار کنکروں سے بہتر ہے. تو کئی لوگ بہت نمازیں پڑھتے ہیں, بہت روزے رکھتے ہیں لیکن اخلاص نہیں ہے, اور وہ دھوکہ کھا جاتے ہیں اپنی نمازوں سے. ایسے عمل اس دن اڑا دیے جائیں گے, ان کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی. اور پھر جب خالی ہاتھ وہاں پہنچے گا انسان تو کچھ بھی نہیں ہوگا اس کے پاس.